एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे दार्शनिक के विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने समय को बल्कि आने वाली सदियों की सोच को भी मतलब हिला के रख दिया। बारूख स्पिनोजा।
जी हाँ, स्पिनोजा एक ऐसा नाम जो तर्क, ईश्वर, प्रकृति और हाँ मानवीय स्वतंत्रता के बारे में हमारी जो बनी बनाई धारणाएं हैं ना, उन्हें सीधी चुनौती देता है।
बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक और दार्शनिक नहीं थे बल्कि विचारों के एक सच्चे क्रांतिकारी थे।
सही कहा, उनके सवाल इतने मौलिक थे और जवाब इतने साहसिक कि आज भी यू नो उनमें हमें उलझाने और शायद रास्ता दिखाने की ताकत है।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जैसे उनके जीवन और दर्शन पर लिखे गए लेख और विश्लेषण हैं।
हाँ, उन्हीं के आधार पर हम स्पिनोजा के जो जटिल पर बेहद जरूरी विचार हैं, उन्हें एक दिलचस्प बातचीत की शक्ल दें,
ताकि उनकी बौद्धिक विरासत का जो सार है उसे समझ सकें।
बिल्कुल।
तो चलिए उस जमाने में चलते हैं जब स्पिनोजा सोच रहे थे, लिख रहे थे। 17वीं सदी का यूरोप, खासकर नीदरलैंड्स, जहां 1632 में उनका जन्म हुआ।
हाँ, वो डच स्वर्ण युग था, मतलब व्यापार फल फूल रहा था, कला विज्ञान सब में नई बातें हो रही थीं।
और माहौल भी शायद बाकी यूरोप से ज्यादा सहिष्णु था
काफी हद तक। और ये वो दौर भी था जब गैलीलियो, केपलर, न्यूटन जैसे लोग ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल रहे थे, गणित और तर्क की भाषा में उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। एक नई बौद्धिक ऊर्जा थी हवा में।
हाँ, और दर्शन में रेने डेकार्ट का नाम तो बहुत बड़ा था उस वक्त।
जी, डेकार्ट का बहुत प्रभाव था। उन्होंने ही कहा था कि भाई सच्चा ज्ञान तर्क से मिलता है, सिर्फ अनुभव या आस्था से नहीं। स्पिनोजा इसी माहौल में पले बढ़े।
उनके समकालीन और कौन थे डेकार्ट के अलावा?
और ये जो नए वैज्ञानिक विचार आ रहे थे
उनके बीच जबरदस्त टकराव था।
हाँ, एक बौद्धिक कश्मकश चल रही थी और स्पिनोजा इस कश्मकश के बिल्कुल बीचों बीच थे। और कमाल ये कि उन्होंने किसी भी पक्ष से पूरी तरह समझौता नहीं किया।
उनका अपना रास्ता था। अच्छा, उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए, वो भी काफी नाटकीय लगता है।
हाँ बिल्कुल, एम्स्टर्डम में जन्म हुआ एक संपन्न पुर्तगाली यहूदी परिवार में। उनके पुरखे पुर्तगाल में जो इन्क्विजिशन चल रहा था, जो धार्मिक अत्याचार था, उससे बचकर नीदरलैंड्स आए थे जहां थोड़ी ज्यादा सहिष्णुता थी। तो स्पिनोजा को पारंपरिक यहूदी शिक्षा मिली, हिब्रू, तलमूद और मेमोनाइड्स जैसे जो मध्ययुगीन यहूदी दार्शनिक थे उनका अध्ययन किया।
लेकिन वो पारंपरिक रास्ते पर टिके नहीं रहे।
नहीं, उनकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी वो उन्हें बाहर ले गई। जैसे ही उन्होंने डेकार्टे और दूसरे नए विचारकों को पढ़ा, उनके मन में गहरे सवाल उठने लगे।
कैसे सवाल?
जैसे कि भाई ईश्वर की प्रकृति असल में है क्या? क्या आत्मा वाकई अमर है? और ये जो धर्म ग्रंथ है, क्या ये सच में ईश्वर के शब्द हैं? और बस इन सवालों ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया।
मुसीबत मतलब?
1656 में, तब वो सिर्फ 23 साल के थे, उन्हें एम्स्टर्डम के यहूदी समुदाय से हेरेम कर दिया गया, मतलब बहिष्कृत।
23 साल की उम्र में? ये तो बहुत।
हाँ, ये बहुत कठोर सजा थी, एक तरह का पूरा सामाजिक और धार्मिक बायकॉट। इसने उन्हें उनके समुदाय से और शायद परिवार से भी हमेशा के लिए अलग कर दिया।
अपने विचारों पर टिके रहने की ये तो बहुत बड़ी कीमत चुकाई उन्होंने। इसके बाद क्या किया उन्होंने?
एक तरह से उन्होंने अपनी पुरानी पहचान छोड़ी, अपना हिब्रू नाम बारुक बदलकर लैटिन नाम बेनेडिक्ट रख लिया, मतलब दोनों का एक ही है, धन्य या ब्लेस्ड।
अच्छा।
हाँ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के लिए अच्छे लेंस चाहिए होते थे। तो ये काम उन्हें उस दौर की जो वैज्ञानिक क्रांति थी उससे भी जोड़ता था।
और सुना, इन्होंने बहुत सादा जीवन जिया, चाहते तो शायद आराम से रह सकते थे।
हाँ बिल्कुल, बहुत सादगी से रहते थे, अपना ज्यादातर समय दर्शन पर सोचने, लिखने और यूरोप भर के जो बुद्धिजीवी थे उनसे चिट्ठी पत्री करने में लगाते थे।
अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता उन्हें बहुत प्यारी थी, है ना? वो यूनिवर्सिटी वाली बात भी है।
हाँ, वो कमाल की बात है। 1673 में जर्मनी की एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है हीडलबर्ग, वहां से प्रोफेसर बनने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
मना कर दिया क्यों?
उन्हें डर था कि ये अकेडमिक पद उनकी जो सोचने की आजादी है उस पर रोक लगा देगा। शायद उन्हें धार्मिक मामलों में चुप रहना पड़ेगा, मतलब शोहरत और सुरक्षा से ज्यादा उन्हें अपनी आजादी प्यारी थी, ये उनके चरित्र को दिखाता है।
और इसी आजादी में उन्होंने वो रचनाएं लिखी जिन्होंने दर्शन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। सबसे मशहूर तो इथिका है।
जी, इथिका पूरा नाम है एथिक्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन ज्योमेट्रिकल ऑर्डर। ये उनकी मृत्यु के बाद 1677 में छपी और इसका स्टाइल, जैसा आपने कहा, बिल्कुल अनोखा है।
ज्योमेट्री जैसा क्यों लिखा उन्होंने?
शायद वो दिखाना चाहते थे कि नैतिकता और ब्रह्मांड के नियम भी उतने ही निश्चित और तार्किक हैं जितने गणित के। तो उन्होंने यूक्लिड की तरह लिखा, पहले परिभाषाएं दीं, फिर स्वयं सिद्ध, फिर प्रस्ताव और उनके तार्किक प्रमाण।
पढ़ने में तो मुश्किल होती होगी।
हाँ, आसान नहीं है, लेकिन इसमें स्पिनोजा ने अपना पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल सिस्टम, मतलब ब्रह्मांड कैसे बना है, मन कैसे काम करता है, हमें जीना कैसे चाहिए, सब कुछ एक कोहेरेंट, एक तार्किक ढांचे में पेश करने की कोशिश की है। एक तरह से ये ब्रह्मांड को समझने का महाकाव्य है।
और उनकी एक और किताब थी जिसने काफी हंगामा खड़ा किया था।
हाँ, वो थी थियोलॉजिकल पॉलिटिकल ट्रीटाइज, धर्मशास्त्रीय राजनीतिक ग्रंथ। ये 1670 में आई, पर बिना नाम के।
बिना नाम के क्यों?
क्योंकि इसके विचार उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत विस्फोटक थे। इसमें उन्होंने बाइबल की ऐतिहासिक पड़ताल की। ये कहा कि ये ईश्वर की आवाज़ नहीं, बल्कि इंसानों की लिखी किताब है, अपने समय और समाज के असर में लिखी गई।
ओहो, ये तो सीधी टक्कर थी धर्मगुरुओं से।
बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि दर्शन को धर्मशास्त्र के चंगुल से आज़ाद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जबरदस्त वकालत की।
और राजनीति पर भी कुछ कहा?
हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि एक सेक्युलर लोकतांत्रिक सरकार ही समाज में शांति और सुरक्षा ला सकती है। ये किताब आधुनिक सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म की नींव रखने वाले टेक्स्ट में गिनी जाती है।
तो मतलब वो सिर्फ ईश्वर और आत्मा जैसी बातों तक सीमित नहीं थे, समाज और राजनीति पर भी उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे।
बिल्कुल।
अब आते हैं उनके सबसे चर्चित और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले विचार पर, ईश्वर और प्रकृति के बारे में।
हाँ, ये स्पिनोजा के दर्शन का एकदम केंद्र है। इसे कहते हैं पदार्थ अद्वैतवाद, सब्सटेंस मोनिज्म, या फिर जो ज्यादा पॉपुलर शब्द है, पैंथीइज्म, सर्वेश्वरवाद।
सर्वेश्वरवाद मतलब सब कुछ ईश्वर है।
हाँ, एक तरह से। स्पिनोजा ने कहा कि देखो, ब्रह्मांड में केवल एक ही मूल चीज है, एक ही सब्सटेंस, एक ही तत्व। ये अनंत है, ये खुद से मौजूद है, और यही तत्व ईश्वर है, या कह लो यही प्रकृति है। उनका वो मशहूर सूत्र है ना, नेचर देवस्सिवे
नातुरा, ईश्वर या प्रकृति। तो इसका मतलब वो ये कह रहे थे कि कोई ऊपर आसमान में बैठा ईश्वर नहीं है जो दुनिया चला रहा है।
बिल्कुल, यही स्पिनोजा के लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो दुनिया से बाहर बैठा हो, हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा हो या चमत्कार कर रहा हो। ईश्वर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसके सारे नियम, सारी घटनाएं, इसकी पूरी टोटैलिटी,
हर चीज, मतलब मैं, आप, ये हवा, तारे,
सब कुछ, हर चीज उसी एक ईश्वर प्रकृति के अलग अलग रूप है जिन्हें वो मोड्स कहते हैं। आप ऐसे सोचिए कि वास्तविकता एक अनंत समुद्र है, ये सब्सटेंस है। इस समुद्र के दो जरूरी गुण हैं, एट्रीब्यूट्स, जिन्हें हम जान सकते हैं। एक है विस्तार, एक्सटेंशन, यानी जगह घेरना, फिजिकल होना, और दूसरा है विचार, थॉट, यानी चेतना या सोचना।
अच्छा, विस्तार और विचार।
हाँ, और हर लहर, हर बूंद, मतलब हर इंसान, हर पत्थर, हर ख्याल, ये सब उसी समुद्र के मोड्स हैं, उसी से बने हैं, उसी का हिस्सा हैं।
तो ये तो डेकार्ट का जो मन शरीर वाला द्वैतवाद था उसको भी नकारता है,
कि मन अलग है, शरीर अलग।
बिल्कुल नकारता है। स्पिनोजा के लिए मन और शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं जिन्हें किसी गोंद से चिपकाना पड़े। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सब्सटेंस, ईश्वर प्रकृति, के दो अलग अलग गुण, एट्रीब्यूट्स हैं, विचार और विस्तार। जो हमारे शरीर में होता है उसका असर मन पर पड़ता है, और जो मन में होता है उसका असर शरीर पर। वो जुड़े हुए हैं, एक ही चीज के दो रूप हैं।
अगर सब कुछ ईश्वर प्रकृति का ही हिस्सा है और उसके नियमों से ही चल रहा है, तो फिर हमारी मर्जी का क्या? फ्री विल, क्या हम जो चाहे वो कर सकते हैं?
यहीं पर स्पिनोजा का नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म आता है। उनका तर्क था कि क्योंकि सब कुछ ईश्वर प्रकृति के स्वभाव से ही निकल रहा है और उसका स्वभाव शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, तो कुछ भी अचानक या बिना कारण के नहीं होता। हर घटना का एक कारण है और वो कारण भी किसी पिछले कारण का नतीजा है।
तो फिर फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं है, उस तरह से नहीं जैसे हम सोचते हैं। मतलब बिना किसी कारण के कुछ भी चुन लेने की ताकत, वो स्पिनोजा के हिसाब से एक भ्रम है।
तो फिर हम सब सिर्फ कठपुतलियां हैं। हमारी आजादी का क्या मतलब हुआ? ये तो सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है।
स्पिनोजा कहते थे कि निराशाजनक नहीं बल्कि मुक्तिदायक है। सच्ची आजादी ये नहीं कि हम बिना कारण कुछ भी चुन लें, क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं। सच्ची आजादी है तर्क के जरिए उन कारणों को समझना जो हमें चलाते हैं।
अच्छा, समझने से आजादी है, कैसे?
जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप समझ जाएं कि गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, आपकी अपनी कौन सी भावनाएं हैं, बाहरी कौन सी परिस्थितियां हैं, तो आप उस गुस्से के गुलाम नहीं रहेंगे। आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं या कम से कम उसे शांति से देख सकते हैं। तो ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, यही असली स्वतंत्रता है। समझना ही स्वतंत्र होना है।
और नैतिकता का क्या? अगर सब कुछ तय है तो फिर अच्छे बुरे का क्या मतलब? हम खुश कैसे रह सकते हैं?
स्पिनोजा का मानना था कि दुख आता है हमारी निष्क्रिय भावनाओं से, जैसे डर, गुस्सा, नफरत। ये तब उठती हैं जब हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित होते हैं पर उन्हें समझते नहीं।
अच्छा।
लेकिन जब हम तर्क का इस्तेमाल करके इन घटनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं के कारणों को समझ लेते हैं, तो हम इन निष्क्रिय भावनाओं को सक्रिय भावनाओं में बदल सकते हैं, जैसे खुशी, प्रेम, संतोष।
और जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है उनके हिसाब से?
वो है अमोर देई इंटेलेक्चुअलिस, ईश्वर या प्रकृति का बौद्धिक प्रेम। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसकी जो तर्कसंगत व्यवस्था है और इसमें हमारा जो स्थान है, उसे गहराई से समझना और स्वीकार करना। इसी समझ से जो शांति और आनंद मिलता है, वही परम लक्ष्य है।
जाहिर है, ऐसे विचार उनके समय में आसानी से स्वीकार नहीं किए गए होंगे।
बिल्कुल नहीं। उन्हें तो कट्टर विधर्मी माना गया, नास्तिक कहा गया, उनकी किताबों पर बैन लगा दिया गया। स्पिनोजिस्ट होना तो एक गाली की तरह इस्तेमाल होता था। वो काफी अकेले और गलत समझे गए विचारक के तौर पर जिए और मरे।
लेकिन बाद में लोगों ने उनके काम को समझा।
हाँ, देर से ही सही। 18वीं सदी में प्रबुद्धता यानी एनलाइटनमेंट के दौर में, और फिर खासकर 19वीं सदी में जर्मनी के जो दार्शनिक थे, गोएथे, हेगल, शेलिंग, उन्होंने स्पिनोजा की अहमियत पहचानी।
और आइंस्टीन ने भी उनका जिक्र किया था शायद।
जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि उनका जो कॉस्मिक धार्मिक एहसास है, वो किसी पर्सनल गॉड में यकीन नहीं करता, बल्कि स्पिनोजा के ईश्वर जैसा है, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके नियमों की सुंदरता में जाहिर होता है।
तो आज हम स्पिनोजा को कैसे देखते हैं? उनकी विरासत क्या है?
आज तो उन्हें बिना किसी शक के आधुनिक युग के सबसे महान और सबसे मौलिक विचारकों में गिना जाता है। बाइबल पर उनकी जो आलोचनात्मक दृष्टि थी, उसने धर्म ग्रंथों के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी।
और राजनीति में?
लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनके जो विचार थे, उन्होंने लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी को बहुत प्रभावित किया। और ये जो उनकी ईश्वर और प्रकृति को एक मानने वाली दृष्टि है, वो आज भी, यू नो, एनवायरमेंटल फिलॉसफी, डीप इकोलॉजी और यहाँ तक कि कॉन्शियसनेस और ब्रेन को समझने वाले कॉग्निटिव साइंस जैसे फील्ड्स को भी प्रेरणा देती है।
उनके कुछ कथन भी बहुत मशहूर हैं, जैसे एथिका से ये वाक्य, स्वतंत्र व्यक्ति मृत्यु के बारे में सबसे कम सोचता है और उसका ज्ञान मृत्यु पर नहीं बल्कि जीवन पर एक ध्यान है। कितना पॉजिटिव है ये।
हाँ, बहुत। और ये भी देखिए, मैंने मानवीय कार्यों पर हंसने, रोने या घृणा करने का नहीं बल्कि उन्हें समझने का निरंतर प्रयास किया है। ये उनका ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रवैया दिखाता है, जज करने के बजाय समझना।
और उनका वो मूल मंत्र तो है ही, द्यूस सेव नाटूरा, ईश्वर या प्रकृति।
बिल्कुल। और वो बात के समझना ही स्वतंत्र होना है। ज्ञान और मुक्ति का ये कनेक्शन उनके दर्शन का सार है।
लेकिन आलोचनाएं भी तो हुई होंगी, होती होंगी।
बहुत हुई और आज भी होती हैं। पहला और सबसे आम आरोप तो नास्तिकता का ही था, क्योंकि वो पर्सनल गॉड को नहीं मानते थे।
और वो नैतिकवाद वाली बात।
हाँ, कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर नैतिक जिम्मेदारी कहाँ बचती है? हम किसी को अच्छे या बुरे काम के लिए कैसे जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है।
सही बात है। और एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सब कुछ एक परफेक्ट ईश्वर प्रकृति का हिस्सा है, तो दुनिया में इतनी बुराई, दुख, कमियां क्यों दिखती हैं?
स्पिनोजा का जवाब थोड़ा जटिल है। वो मानते थे कि बुराई या कमी जैसी चीजें हमारे सीमित मानवीय नजरिए से पैदा होती हैं। हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। ईश्वर प्रकृति के अनंत दृष्टिकोण से सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। सब जरूरी है, सब अपने आप में पूरा है। ये मानना आसान नहीं है, पर ये उनके सिस्टम का लॉजिकल नतीजा है।
उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं।
हाँ, कुछ हैं जो उनके व्यक्तित्व की झलक देते हैं। जैसे ये जो लेंस घिसने का काम था, जिसने उन्हें पैसे तो दिए पर शायद उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। माना जाता है कि कांच की धूल फेफड़ों में जाने से उन्हें कोई बीमारी हुई, सिलिकोसिस जैसी, और सिर्फ 44 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।
सिर्फ 44? और वो गुस्से वाली घटना भी तो है।
हाँ, 1672 में उनके जो राजनीतिक संरक्षक थे डेविड बंधु, उनकी गुस्साई भीड़ ने हत्या कर दी। स्पिनोजा इतने दुखी और गुस्से में थे कि वो हत्यारों को परम बर्बर कहने वाला एक पोस्टर लगाना चाहते थे।
अरे, ये तो खतरनाक हो सकता था।
बहुत। उनके मकान मालिक ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका, उनकी जान बचाई। ये दिखाता है कि अंदर से वो कितने पैशनेट थे, न्याय को लेकर कितने सजग थे।
और मकड़ी वाली कहानी, वो क्या है?
कहते हैं कि वो कभी कभी मकड़ियों को मक्खियां पकड़कर खाते हुए देखते थे और उसमें मनोरंजन पाते थे। शायद उन्हें उसमें प्रकृति का जो संघर्ष है उसका एक छोटा रूप दिखता होगा। और ये भी दिलचस्प है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास बहुत ज्यादा किताबें नहीं थी, कोई 150 के करीब ही होंगी।
अच्छा।
हाँ, लेकिन उनमें विज्ञान, दर्शन, राजनीति की उस समय की बेहतरीन किताबें शामिल थीं। ये उनके ज्ञान की गहराई दिखाता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो स्पिनोजा हमें तर्क, प्रकृति और स्वतंत्रता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की चुनौती देते हैं।
हाँ, वो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जो तर्कसंगत नियमों से चलती है और जहां सच्ची खुशी और मुक्ति डर या अंधविश्वास से नहीं बल्कि समझ से, अंडरस्टैंडिंग से आती है।
बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए आज का चिंतनशील विचार शायद यही हो सकता है।
हाँ, कि स्पिनोजा का ये क्रांतिकारी सूत्र देउस सीव नेचुरा, ईश्वर या प्रकृति, आज हमारे लिए क्या मायने रखता है।
खासकर आज के समय में जब हम पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं।
सही बात है। क्या प्रकृति को ही पवित्र या ईश्वरीय मानने का विचार हमें उसके प्रति ज्यादा सम्मान और जिम्मेदारी का भाव दे सकता है? क्या ये ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है?
गहरे सवाल हैं जिन पर स्पिनोजा हमें आज भी सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।